प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी
कार्यक्रम सत्य वचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
जीवन में मेरे जब आया प्रभु, मन आनंद से तब झूम उठा। जीवन में मेरे जब आया प्रभु, मन आनंद से तब झूम उठा। जीवन में मेरे
इस मधुर संगीत रचना के साथ ही हम आज के बाइबल अध्ययन कार्यक्रम की ओर चलते हैं, किंतु इससे पूर्व कि हम अपने कार्यक्रम को आरंभ करें, अपने मनों की तैयारी के लिए प्रभु परमेश्वर से सामर्थ्य मांगें और प्रार्थना करें। हे महापराक्रमी जीवित और सच्चे परमेश्वर पिता, हम बड़ी दीनता के साथ अपने सिरों को आपके आगे झुकाते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी महान करुणा से ये सुंदर क्षण हमको प्रदान किए हैं कि हम आपके जीवित और पवित्र वचन का अध्ययन कर सकें। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन को समझने, ग्रहण करने और इस पर विश्वास करने में हमारी सहायता करें। हमारी सहायता करें कि हम आपके परिदृश्य को समझ सकें और उसके अनुसार आचरण भी कर सकें। हमारे मध्य में यदि कोई श्रोता भाई बहन किसी मानसिक तनाव से पीड़ित है, किसी चिंता में डूबा है या किसी घोर पाप में फंसा हुआ है, प्रभु आप उसकी रक्षा और सहायता करें। हमारे मध्य में उत्पन्न होने वाली सारी बाधाओं को प्रभु जी आप दूर करें, ताकि हम पूर्ण स्वतंत्रता के साथ आपके वचन का आनंद ले सकें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर लें, क्योंकि हम ये प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। हाँ तो मित्र, आइए अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम नए नियम से रोमियों की पत्री का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इस पत्री के लेखक प्रेरित पौलुस हैं। पिछले बाइबल अध्ययन में हमने प्रेरित पौलुस की रोम जाने की हार्दिक इच्छा के विषय में अध्ययन किया, जैसा कि बारहवें पद में हमने पढ़ा, अर्थात जब मैं तुम्हारे मध्य हूं तो हम आपस में एक दूसरे के विश्वास से प्रोत्साहित किए जाएं। और ग्यारहवें पद में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं, जिससे कि तुम्हें कुछ आत्मिक वरदान दे सकूं कि तुम दृढ़ हो जाओ। उन्होंने यहां पर बताया कि मैं तुम्हें भी, जो रोम में रहते हो, सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्सुक हूं। प्रीत इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं यूनानियों तथा गैर यूनानियों का ऋणी हूं, अर्थात कर्जदार हूं, क्योंकि इनके पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने प्रेरित पौलुस पर बहुतायत से अपना अनुग्रह किया है। और आज प्रत्येक विश्वासी, प्रत्येक सेवक उन लोगों का कर्जदार है, अर्थात ऋणी है, जिनके पास अभी तक सुसमाचार नहीं पहुंचा है, क्योंकि इन्हीं के लिए परमेश्वर के अनुग्रह की वर्षा हम पर हो रही है। इसलिए हम आशीषित किए जा रहे हैं कि हम इस अनुग्रह के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्होंने अभी तक इसको नहीं सुना है। मैं अपनी बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि घोड़े को व्यर्थ में चने नहीं खिलाए जाते, खाने के पश्चात उससे कार्य की अपेक्षा की जाती है। आप ऋणी होने का अर्थ तो समझते होंगे, जो निर्धारित मूल्य आपने नहीं चुकाया और जिसको चुकाना था उसे नहीं चुकाया, इस दशा में आप उस व्यक्ति के ऋणी बन जाते हैं जिसका पैसा या मूल्य आपको चुकाना था। श्रोता, जब तक समस्त संसार सुसमाचार नहीं सुन लेता, हमारा कर्ज, हमारा ऋण पूरा नहीं होगा। प्रेरित पौलुस रोम का ऋणी था और इसलिए वो वहां जाना चाहता था। और इस प्रकार 14वें पद में वह स्वयं को ऋणी बताता है और 15वें पद में वो ऋण चुकाने की बात करता है। जैसा हमने यहां पर पढ़ा कि मैं यूनानियों और बर्बरों, बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों दोनों का ऋणी हूं, और इसलिए जहां तक मेरा संबंध है, मैं तुम्हें भी, जो रोम में हो, सुसमाचार प्रचार करने के लिए उत्सुक हूं। सो आज हम 16वें पद से अपने बाइबल अध्ययन को आरंभ करेंगे। 16 और 17 पदों में इस प्रकार से लिखा है, रोमियों की पत्री प्रथम अध्याय 16 और 17 पद, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता, क्योंकि यह प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी और फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, परंतु धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा। मित्र, प्रेरित पौलुस लिखते हैं, मैं सुसमाचार से लज्जित नहीं होता। पौलुस का यहां कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ऋणी हूं, मैं तैयार हूं, मैं लज्जित नहीं होता। मैं सुसमाचार का ऋणी हूं, मैं उसको सुनाने के लिए तैयार हूं, और मुझे सुसमाचार को सुनाने से कोई लज्जा नहीं होती है। ये तीनों कथन तीन दशाओं को प्रकट करते हैं। पहला कथन, मैं ऋणी हूं, ये इस बात को प्रकट करता है कि पौलुस पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। मैं तैयार हूं, ये छुटकारे अर्थात क्षमा के विषय में दर्शाता है। और तीसरी बात, मैं लज्जित नहीं होता, ये अधीनता को प्रकट करता है। और ये पौलुस की मुख्य सेवाएं हैं जिसको पौलुस ने अपने जीवन काल में किया। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रेरित पौलुस सुसमाचार से क्यों नहीं ले जाते? मित्र, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ है, और इसके लिए यूनानी शब्द ड्यूनामिस का प्रयोग किया गया है। इसे हम दिव्य शक्ति कह सकते हैं। सुसमाचार में सामर्थ्य है, और इसमें मन परिवर्तन अर्थात जीवन परिवर्तन करने की सामर्थ्य है। इसमें शैतान के गढ़ों को ढा देने की सामर्थ्य है। इसमें उद्धार की सामर्थ्य है, जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों के पहले अध्याय के 18वें और 24वें पदों में पढ़ सकते हैं। उद्धार का अर्थ है छुटकारा। सुसमाचार प्रत्येक मानव के लिए है, और इसका संबंध व्यक्तिगत है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अपने पापों से छुटकारे की आवश्यकता है। उसे व्यक्तिगत रूप से उद्धार प्राप्त करने की आवश्यकता है। इसलिए सुसमाचार व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। सुसमाचार विश्वव्यापी है, क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और इसलिए परमेश्वर ने सबके लिए एक उद्धारकर्ता को हमेशा के लिए दे दिया है। उद्धार व्यक्तिगत विश्वास पर निर्भर करता है, और प्रत्येक विश्वास करने वाले के लिए यह परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये कैसी सुंदर बात है मेरे मित्र, यदि आप इस पर विश्वास लाते हैं तो आप बड़ी सामर्थ्य के साथ शैतान और अंधकार की शक्तियों के हाथों से छुड़ाए जाते हैं, और अनंत जीवन के लिए आपको सुरक्षित किया जाता है। यह सामर्थ्य नहीं तो और क्या है? इसी सामर्थ्य के द्वारा मैं छुड़ाया गया हूं। मुझे पाप और उसके बंधनों से छुटकारा मिला है। सामर्थी शैतान के हाथों से मुझे छुटकारा मिला है, और मेरे समान असंख्य लोगों को सुसमाचार के द्वारा छुटकारा प्राप्त हुआ है। सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ्य है। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है। सामर्थ्य बातों से नहीं परखी जा सकती, यह आप व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा ही परख सकते हैं। 17वें पद में बताया गया है कि यह परमेश्वर की धार्मिकता है। इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। मेरे मित्र, ये धार्मिकता जो परमेश्वर की है, इसका तात्पर्य है ये परमेश्वर की ओर से है। यह मनुष्य द्वारा अर्जित धार्मिकता नहीं है। परमेश्वर ने पहले ही से यह स्पष्ट कर दिया कि वह मनुष्य के द्वारा अर्जित की हुई धार्मिकता को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये धार्मिकता ऐसी है जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 64वें अध्याय के 6वें पद के द्वारा इस धार्मिकता के विषय में बताया गया है कि धार्मिकता जो मनुष्य की है, जो मनुष्य अर्जित करता है, वो परमेश्वर के समक्ष मैले चिथड़ों के समान है। अर्थात मनुष्य के धर्म के कार्य परमेश्वर की दृष्टि में गंदे चिथड़ों के समान है। और यहां 17वें पद में पौलुस यीशु मसीह की धार्मिकता की चर्चा कर रहे हैं। ये वो धार्मिकता है जिसमें एक पापी जन ढांप लिया जाता है, और तब परमेश्वर उस पापी जन को नहीं देखते, वरन उसे प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। और जब उसे वो प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं तो वो धर्मी दिखाई देता है, क्योंकि उसने मसीह की धार्मिकता को पहन लिया है। मेरे मित्र, परमेश्वर पिता भटके हुए पापी को प्रभु यीशु मसीह में पुनः सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं। विश्वासी विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वासी का अर्थ है परमेश्वर द्वारा पूर्णता स्वीकार किया जाने वाला व्यक्ति। विश्वासी वो व्यक्ति है जिसे परमेश्वर ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके छुटकारे के लिए अपना प्राण क्रूस पर दिया है। और इस धार्मिकता को प्राप्त करने का एकमात्र ढंग विश्वास है। जी हां मित्र, किसी भी ढंग से आप परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते, केवल विश्वास द्वारा इस धार्मिकता को ग्रहण किया जा सकता है। और यह विश्वास द्वारा धार्मिकता है, और इसलिए यहां लिखा हुआ है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आप इसे प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं कर सकते। आप यदि कुछ कर सकते हैं तो केवल विश्वास कर सकते हैं, जैसा कि पौलुस फिलिप्पियों की पत्री में बताते हैं। फिलिप्पियों की पत्री के तीसरे अध्याय के 9वें पद में पौलुस कहते हैं, और मैं मसीह में पाया जाऊं ये अपनी उस धार्मिकता से नहीं जो व्यवस्था से उत्पन्न होती है, परंतु उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने से मिलती है, अर्थात उस धार्मिकता से जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है, जो केवल विश्वास के आधार पर परमेश्वर से प्राप्त होती है। धार्मिकता के लिए अंग्रेजी शब्द राइचियसनेस है, और इसका मूल शब्द यूनानी भाषा का दिकाइओ सुने शब्द है। नए नियम में इस शब्द का प्रयोग 92 बार हुआ है और 36 बार केवल रोमियो की पत्री ही में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। नए नियम में 92 बार, 90-92, और रोमियो की पत्री में 36 बार ये शब्द प्रयोग हुआ है, परमेश्वर की धार्मिकता। इस वाक्यांश का प्रयोग इस पत्री में 8 बार हुआ है। इसका मूल यूनानी शब्द डाइके है, जिसका अर्थ है उचित या सही। न्याय तथा निर्दोष शब्द इसी से निकलते हैं। जिस धार्मिकता की पौलुस चर्चा कर रहे हैं, ये परमेश्वर की मांग है, और ये वही है जिसे परमेश्वर ने स्वयं प्रदान किया है। यही वो धार्मिकता है जो परमेश्वर की ओर से है, विश्वास द्वारा, विश्वास के लिए। परमेश्वर आपको विश्वास द्वारा बचाता है, और आप विश्वास द्वारा जीवित रहते हैं। आप विश्वास द्वारा इस संसार से जाते हैं और विश्वास द्वारा स्वर्ग में रहेंगे। प्रेरित पौलुस यहां हबक्कूक नबी के पुस्तक के 2 अध्याय के 4 पद को उद्धृत कर रहे हैं कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और इस कथन का उल्लेख 3 महान पत्रियों में किया गया है, रोमियों की पत्री में, गलातियों की तथा इब्रानियों की पत्री में। इस कथन का प्रयोग किया गया है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यह महत्वपूर्ण बात है। धर्मी जन अपने कर्मों से नहीं वरन विश्वास से जीवित रहेगा। इसका तात्पर्य यह है कि पापी जो मसीह पर विश्वास लाता है उसके केवल पाप ही क्षमा नहीं होते, वरन वह प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने का साहस भी कर सकता है। दूसरे शब्दों में उसकी पहुंच परमेश्वर तक संभव हो जाती है। जैसा कि हम रोमियों की पत्री के 4 अध्याय के 25वें पद में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस कारण से इस संसार में आए और किस कारण से उन्होंने हमारे लिए प्राण दिया, यहां लिखा है वो हमारे अपराधों के कारण पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया भी गया। सो इस प्रकार हम यीशु मसीह में संपूर्ण अर्थात सिद्ध बन जाते हैं। अब यहां पौलुस का अभिवादन समाप्त होता है। इसके पश्चात वो नया खंड आरंभ करते हैं। इस नए खंड में वो मनुष्य के पाप को प्रकट करते हैं। मित्रवर, विश्वव्यापी सत्य तो ये है कि मैं मनुष्य अर्थात मैं और आप पापी हैं। संसार परमेश्वर के समक्ष दोषी है, परंतु मनुष्य अपना दोष स्वीकार करने की अपेक्षा परमेश्वर ही को अस्वीकार करना आरंभ कर देता है। परंतु इस प्रकार वो सत्य को दबा नहीं सकता। संसार दोषी है, उसे परमेश्वर की धार्मिकता की आवश्यकता है। हमें इस बात को स्वीकार करना है, और इन पदों में परमेश्वर की धार्मिकता को पौलुस नहीं बताते, बल्कि मनुष्य के पाप के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध को प्रकट कर रहे हैं। सो आइए अग्रिम पदों में देखें कि परमेश्वर का स्वाभाविक प्रकाशन क्या है। 18 से 23 पदों में परमेश्वर से संबंधित ज्ञान मनुष्यों पर प्रकट है क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है, और इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है क्योंकि वे सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, क्योंकि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण, अनंत सामर्थ्य और परमेश्वरत्व उसकी रचना के द्वारा समझे जाकर स्पष्ट दिखाई देते हैं, और इसलिए उनके पास कोई बहाना नहीं। श्रोता, यदि आप उद्धार अर्थात छुटकारे के विषय में जानना चाहते हैं तो आप पाप की भयंकरता के विषय में जानिए। जब तक आप पाप के विषय में नहीं जानेंगे, उसकी भयंकरता के विषय में नहीं पहचानेंगे, तब तक आप उद्धार के विषय में नहीं जान सकते। आपके मन में उद्धार प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगी, आप उद्धार के महत्व को समझ ही नहीं सकते। इसलिए जब आप पाप की भयंकरता को, उसके दंड को पहचानेंगे, तभी आप उद्धार के मानदंड को, उसके मापदंड को समझेंगे। इसलिए पाप उद्धार का मापदंड है। परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर की भावना को दर्शाता है, जैसा कि यहां पर लिखा है, इसलिए परमेश्वर का प्रकोप मनुष्यों की समस्त अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है। परमेश्वर के प्रकोप का अर्थ है परमेश्वर की भावना, उसकी क्या विचारधारा है। पाप के दंड को परमेश्वर का प्रकोप नहीं दर्शाता, बल्कि परमेश्वर की भावना को दर्शाता है। क्रोध एक भावना है, ये परमेश्वर का पवित्र क्रोध है जो पाप के विरुद्ध है, पापी के विरुद्ध नहीं है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है क्योंकि पाप परमेश्वर की पवित्रता के विरोध में है, और यह शैतान की ओर से है, और इसलिए परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप उन लोगों की अभक्ति और अधार्मिकता पर स्वर्ग से प्रकट होता है जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबा दिया। और ये कार्य परमेश्वर की ओर से नहीं, ये शैतान की ओर से है। क्रोध धार्मिकता की विपरीत स्थिति है। परमेश्वर का क्रोध पुराने व नए दोनों नियमों में प्रकट किया गया है। परमेश्वर का स्वभाव बुराई अर्थात दुष्टता के प्रति बदला नहीं है। परमेश्वर दुष्टता से कभी प्रसन्न नहीं होते। आप सोचते हो कि इस युग में परमेश्वर ने अपना स्वभाव बदल लिया है और दुष्टता से उसका कोई संबंध नहीं, जो होता है होता रहे। किंतु मेरे मित्र, ये परमेश्वर की दया और करुणा है, ये उसका धीरज है जो वो समस्त संसार के प्रति रखता है। परमेश्वर का क्रोध आज भी वैसा ही है। आज भी पाप और बुराई के प्रति परमेश्वर वैसे ही ज्वलनशील है। परमेश्वर इसलिए दयावंत नहीं है कि वो पापी के साथ सदैव अर्थात दयावंत या मृदुल हैं, परंतु इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह ने पापी मानव के लिए अपना प्राण दिया है, और इसलिए परमेश्वर पापी के प्रति धीरज रखते हैं। सुसमाचार पाप के प्रति परमेश्वर के व्यवहार को परिवर्तित नहीं करता है, परंतु सुसमाचार ने यह संभव बना दिया कि पापी को भी परमेश्वर द्वारा स्वीकार कर लिया जाए। सुसमाचार द्वारा पापी को भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। अब पापी को दोनों में से एक वस्तु को स्वीकार करना है, या तो परमेश्वर की धार्मिकता या परमेश्वर का प्रकोप। ये दोनों ही स्वर्ग से प्रकट हुए हैं। परमेश्वर की धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। यह समस्त अभक्ति का अर्थ है परमेश्वर के विरुद्ध किए गए कार्य। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के व्यक्तित्व को अस्वीकार करते हैं। वो परमेश्वर को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करते। अधार्मिकता का तात्पर्य है मनुष्य के विरुद्ध कार्य। मनुष्य के विरुद्ध किए गए कार्य अधार्मिकता कहलाती है। अभक्ति, अभक्ति परमेश्वर के विरुद्ध तथा अधार्मिकता मनुष्य के विरुद्ध किए गए कार्य हैं। हमें इन बातों को समझना है। परमेश्वर के नियमों का पालन ना करना ये आत्मा की गतिविधि है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप भड़केगा। ये आत्मिक पाप है। मेरे मित्र, ये ब्रह्मांड जिसमें मैं और आप विचरण करते हैं परमेश्वर के विषय में दो महत्वपूर्ण बातें बताता है। परमेश्वर के विषय में वो बताता है कि उसका व्यक्तित्व और उसकी सामर्थ्य क्या है। इस प्रकार सृष्टि परमेश्वर का स्पष्ट प्रकाशन है। जैसा कि पौलुस कहते हैं कि जगत की सृष्टि से ही परमेश्वर के अदृश्य गुण मनुष्य के सामने प्रकट हैं। ये सबसे प्राथमिक प्रकाशन है। सबसे पहले परमेश्वर ने सृष्टि के द्वारा ही स्वयं को प्रकट किया। प्रेरित 14 उसका 17वां पद और प्रेरित 17 उसका 19वां पद इस विषय पर और भी अधिक प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार दो मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात, परमेश्वर ने स्वयं को साक्षी रहित नहीं छोड़ा। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो परमेश्वर को भी हमारे समान होना चाहिए। परंतु भजनकार बताता है कि मूर्ख ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। प्रिय मित्र, जब मनुष्य परमेश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार करता है उस समय वह पागलपन की स्थिति में होता है, क्योंकि ऐसा वो अज्ञानतावश नहीं बल्कि पाप के ऐतिहासिक आधार के कारण करता है। ये जानबूझकर किया गया विद्रोह है। इसलिए मेरे मित्र, मनुष्य का कार्य यह है कि वो परमेश्वर को पहचाने और परमेश्वर के योग्य उचित सम्मान और धन्यवाद दे सके। ये उसका उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं को उस पर प्रकट किया है। अब इन्हीं वचनों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं पर रोकते हैं। अगले कार्यक्रम में हम मनुष्य द्वारा विद्रोह तथा परमेश्वर के प्रकोप के विषय में अध्ययन करेंगे। सो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
प्रिय श्रोताओ, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। और यदि आज के अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें, हम आपकी सहायता करेंगे। हमारा पता है, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। श्रोताओ, हम आपको बता दें कि आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारी ईमेल आईडी है hindittb@radiovv.org, hindittb@radiovv.org। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।